और उसका घूस हमको देने के लिए कहते हैं, मैं उठा उठा करके फेंक दिया करता, मैं अपने पास हमारे पीछे में रख देते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों के जो ऊपर वाले जो थे, और वहीं पर एक रात है हमको एक मौलवी देखा, अरे आप नहीं रह सकते, इंक्वायरी करने उसके गांव में गया, हम अपने साथ में सब लेकर के गए थे पुलिस कांस्टेबलों को, कहीं आप इसमें कैसे आ गए, फंस गए, आप तो इसमें रह नहीं सकते। उनको जब मैं नहीं समझता जी, एक बार ऐसा हुआ कि हम लोगों के एसपी आने वाले थे, तो उस समय मैं थाना में डिप्यूट हो गया, एक कोई कागज नहीं मिल रहा था, वो यदि कागज नहीं तो सब लोगों को रिवर्ट करेंगे या उन पर कोई दंड देंगे, एसपी किसी को मिल ही नहीं रहा था, थाने में ये सब देख रहे थे, सब फाइल फाइल फाइल, हम कहो जैसे सब लोग देख रहे हैं तुम खोजता क्यों नहीं है, इंस्पेक्टर जो हमारे थे, अच्छा मैंने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम ऐसे करके एक फाइल में हाथ लगाया और उसको निकाल दिया, देखा जी उसी में तो ये अद्भुत बात, ये सब तब उस दिन से मैंने प्रतिज्ञा की अब झूठ कभी नहीं बोलूंगा जीवन में। सुना था जो सच बोलने से बात सिद्धि होती है, तो मैंने हरि नाम का वही देखा। और मथुरा में एक चीज अनुभव किया, और जब मठ में आकर के गुरु जी के साथ में आया था, तो जो धर्मशाला थी जिसमें हम लोग हैं ना, बड़ी गंदी थी और उसमें चारों तरफ टट्टी पट्टी और टूटा फूटा गंदा रहता था, हम लोग उसी में दखल ले करके रजिस्ट्री के बाद में उसी में, गुरु जी भीतर में थे, हम लोग बाहर बरंडा जो अभी हॉल घर है ना, तो आधा था, आधे में उनका उधर में घर था और आधे में छोटा सा उसमें सोया था। रात में 12-1 बजे जो धर्मशाला वाले जो मालिक थे वो दौड़ते हुए रोते हुए आए, गुरु जी गुरु जी गुरु जी बचाइए बचाइए। मैंने कहा भाई हल्ला करते हो, गुरु जी भी सोए हुए क्यों हल्ला करो, तो हमारा बच्चा भी मर गया, समझ गया क्या हो गया, तो मालूम होता है जिसको कोई भूत उत लग गया है, एकदम जीभ बाहर कर दिया है और मुख से फेना गिर करके एकदम आंखों को बदल दिया। मैंने कहा चलो गुरु जी को मत कर, तो मैंने उठ करके हाथ मुख धो करके आचमन किया और चरणामृत ले लिया और गायत्री मंत्र 10 बार जैसे जप करते हैं जप करके और उसी को मुख देने के साथ साथ में आँख एकदम बैठ गया, एकदम पड़ा हुआ था उठ करके, मैं कहाँ हूँ मैं कि आप लोग यहाँ पर किसी, तो मैं चुपचाप चलाया, अब आकर के हमारा पैर पकड़ गया। मैंने कहा आज से गायत्री मंत्र का इस विषय में कभी प्रयोग नहीं करूँगा, तब से जीवन में नहीं किया,
तब से जीवन में इस तरह से प्रयोग नहीं किया,
फिर भक्ति एक बार कर दिया,
संसारिक कार्यों में नहीं, जितने भी मंत्र हैं ये पारमार्थिक हैं, इनका लौकिक क्रिया में व्यवहार नहीं करूँगा, नहीं तो जरूर पूरा हो जाएगा उधर से नष्ट हो जाएगा, इसलिए परमार्थिक चीज ये जितने भी हम लोगों के मंत्र हैं गोपाल मंत्र के, आप जो चाहेंगे वो हो जाएगा, जो चाहेंगे धन अभी आ जाएगा, आप गोपाल मंत्र करते हैं ना तो ये धन का आगम इसीलिए हो रहा है, क्योंकि चाहते भीतर में एक इच्छा है कि कुछ पैसे आ जाए, ये भी ठीक रखेंगे, तो यदि ये आदमी करेगा तो वो लौकिक आ जाएगा, किंतु पारमार्थिक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए जब हम पारमार्थिक जब मंत्र करते हैं गुरु के दिया है, तो जिसके लिए उन्होंने मंत्र दिया है उसके लिए इसका व्यवहार, कृष्ण के चरणों में भक्ति और किसी चीज के लिए बहुत जल्दी उसका फल होगा, हम लोग इसी में गड़बड़ कर देते हैं, हरिनाम करते हैं और सोचते हैं ये आ जाए ये आ जाए ये ऐसा हो जाए या संसारिक चीज बस गड़बड़ हो जाए। Thank you. એટલે કોઈ ભી કામના નહીં. દેખો ઓ પ્રભુજી કો શરદી જુખામ હો રહા હૈ, નાકે કે બહે રહી હૈ, લાલ રહ રહે હૈ આંખે, ઇનકો ભાઈ થોડા સા કુછ દો, નહીં તો અભી ગડબડ કરેંગે યે. ठीक तो तुम्हारा अभी
जल्द
नहीं, वो प्रभु जी को कह रहे हैं, उनकी अवस्था विचित्र होती चली जा रही है,
इनका
अष्ट सात्विक विकार हो रहे हैं.
जब आपके चरण से कि आज नहीं तो कम तो होगा ही होगा,
उनको जरा देखो संभलाओ, उनको कोई और दवा ववा दिलवा दो, ठीक हो जाए.
मैं तो
भैया
पंखा थोड़ी देर पंखा बंद कर फिर ठीक हो जाएगा.
उसको
एक दवा कब दे रहा हूं ना,
एक दे दीजिए.
दही
दी आप ही
दही से डबल हो जाएगा
तब ठीक.
अच्छा बेवकूफ आदमी होता है,
ठीक था ये,
ठीक नहीं था, वहीं से बुखार लेकर के आया. गुरुकुल चाय ले सब, अरे गुरुकुल चाय ले लो,
कश्मीरी कावा ले लो, कश्मीरी कावा.
अरे हाँ बाबू सबसे अच्छी चीज है, ले लो
कश्मीरी कावा, एक मिनट में आराम आ जाएगा, पंखा नहीं बंद रहे थोड़ी देर आराम आएगा. अच्छा महाराज जी आगे
जाओ, थोड़ा सा कुछ ले लो जिससे ठीक हो. गुरुकुल कांगड़ी है उसे
तो बन रहा है कावा, बोल दिया गर्म होकर बनेगा.
स्नान किया भी वहाँ से, स्नान करके बहुत अच्छा, ठंडे पानी से ना बहुत अच्छा. और यहाँ पर दही ले लो, वो खट्टी दही खट्टी होली होती है ना, वो तुम्हारे लिए लाभदायक है, माइनस और माइनस प्लस तुम्हारा होगा. हम लोग सिम्टम देखते हैं, ये मठ में रहेगा कि नहीं, ये रहेगा. जब ये सब गुण जिसमें होते हैं ऐसे ही आदमी रहते हैं मठ में.
ये क्या गुण है महाराज,
ये गुण है,
इस गुण की गुणता क्या है?
जो आदमी कम सुनता है, जिसको सर्दी, जिसको ये सब चीजें रहती है, वो संसार में नहीं रहेगा, वो इंदर में. जिसको संसार वाले पसंद नहीं करेंगे. आज जो सब विषय में एक्सपर्ट है ना, वो शायद ही
है.
आप तो रहे महाराज सब विषय
में. मैं कान से पहले कम सुनता था, अब तो ठीक हो गया. मैं भोला भाला था, लोग हमको बहुत भोला भाला कहते. अब इधर में देखते हैं कृष्ण भक्त बड़ा इच्छा तू भक्ति पढ़ते पढ़ते भागवत इत्यादि पढ़ते 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 अपने आप
चतुर्थ हो जाते हैं. आप तो पहली दृष्टि है आदमी के हृदय को पकड़ लेते हैं तुरंत. मैं वो है ना महाराज, सर्व रिद्धि सिद्धि सत पदांगुली नखे, राधा रानी जी के लिए जो उसने गाया कि उनकी तो अंगूठे के नाखून के नीचे सारी रिद्धि सिद्धियां हैं, और आपने उनको वो किया हुआ है, आपके अंदर तो रिद्धि सिद्धि बड़ी हुआ. मैं अनुभव करता हूँ कि आपका हृदय में वो करके स्मरण करके जाप या कुछ भी करे तो अंदर से बड़ी सफलता प्राप्त होती है, और ऐसा जैसे कि कोई भी कष्ट हो एकदम दूर हो जाएगा.
ध्यान मग्न हो रही है क्या बात, गड़बड़ी तो नहीं है, शरीर ठीक है.
अच्छा अब महाराज एक बात बताऊं, अभी हम लोग ना ट्रेन से आ रहे थे या जा रहे थे,
बैठे ऊपर ही बैठे.
क्षमा करना, चले बैठ.
नहीं नहीं आप ऊपर बैठे, आप बुजुर्ग आदमी हैं, वृद्ध हैं. और सबसे कष्ट की बात क्या है, संसार में मोह रख, जहां मोह रहेगा भगवान की विस्मृति हो जाएगी, और यही सबसे जड़ है।
इसी का मोह रखने का क्या अर्थ है?
मोह माने प्रीति, जैसे ये संसारिक जो प्रीति है ये प्रीति नहीं है, भगवान के साथ में जो मोह होगा ममता होगा वो तो ठीक है, और वैसे ही दूसरे संसार में होगा ये संसार का बंधन का कारण है। विषय ए जे प्रीति एबे आछे जे अमार से मत प्रीति हो चरण, चैतन्य चैतामृत में ये ऐसा कहा गया है। कोई भक्त कह रहा है जैसे विषय में हमारी जैसे प्रीति है, ममता है, आसक्ति है, मोह है, सबको एकत्र कर निकाल कर और आपके चरण के प्रति हो जाए, इसमें इसका नाम मोह है, अज्ञानता है, और उसी में उसका नाम क्या हो जाएगा, ये आसक्ति बुरी है, ये जन्म जन्मांतर तक कष्ट देगी और जन्म जन्मांतर के चक्र में रहेगा, और उसमें आसक्ति या जो मोह हुआ वो प्रीति कहलाता है, और वो प्रीति संसार चक्र से निकाल करके कृष्ण के चरणों में पहुंचा देती है, वो समस्त नित्य सुख का कारण बन जाता है। कहते हैं कि यदि एक व्यक्ति है पियक्कड़, एक आदमी पियक्कड़ समझते हैं, मदिरा पान करने वाला चोर, बदमाश, व्यभिचारी, लंपट, जुआ चोर, बहुत ही बदमाश आदमी छटा हुआ है, उसका तुम यदि जानबूझ करके न हो ऐसे भी उसका संग हो जाए तो कुछ प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? एक राशन तेल का टिन रख दो मुख खोल करके, तुम उसके पास में जाओ, यहाँ पर बैठ जाओ, उसका दुर्गंध आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही दुष्ट लोगों के साथ में जो जानबूझ करके नहीं, अज्ञानता से भी जो दुसंग हो जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही संतों के पास में अनजान में भी यदि संग उनका हो जाए तो जरूर संसार से उसको टाल देगा, उसका जरूर फल पड़ेगा, निश्चित रूप में एक्शन होगा नहीं। और यदि प्रीतिपूर्वक हो तो घर में मान लिया कि जैसे कोई प्रहलाद महाराज हैं, अपने पिता हैं, पिता तो भगवत विरोधी हैं, वो विरोध नहीं करते थे प्रहलाद महाराज, किंतु वो विरोध करता था उसका पिता। ऐसे ही हम लोगों को किसी का विरोध नहीं करना है, यदि वो विरोध करते हैं तो हमको चुपचाप सह लेना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, उनसे लड़ना झगड़ना ये सब जरूरत है, बस सहना हमारा काम है, फिर भी भक्ति का अंग हो जाएगा। और कृष्ण में जैसे संसारिक लोग अपने कुत्ते को जैसा प्रेम करते हैं, अपनी गुड़िया को, लाली को, लाला को जैसे प्यार करते हैं, कामी लोग जैसे अपनी प्रिया को प्यार करते हैं, एक कामिनी जैसे अपने जिसको प्यार करती है, ठीक वही चीज लाना है। संसार में वो बुरा चीज है, किंतु तुलसीदास जी भी कहते हैं कामिनी नारी तियारी जिन लोभ ही है प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि। जैसे कामी को अपनी नारी प्यारी होती है, एकदम कुत्ता बन जाता है, उसका कोई भी विवेक इत्यादि लोक लज्जा कुछ नहीं रहती, उसके पीछे पीछे दौड़ता है, उसी तरह से कामी को भी हो जाता है, एकदम पागल हो जाता है, अपने वशीभूत तो नहीं रह पाता है। तो कामी को जैसे नारी अपनी प्यारी होती है, और जैसे लोभी व्यक्ति को दाम, लड़के, परिवार, स्त्री, पुत्र सब खाने बिना मर रहे हैं, और जो लोभी है ना वो इतना लोभ होता है कि एक परसा पर वो देखेगा दो दो पैसा, तीन पैसा, चार पैसा, जलाते जलाते जलाते। भागवत में इसका उदाहरण त्रिदंडी उपाख्यान में दिया, किस तरह से लड़कों को खाने के लिए कमी हो रही है, गाने आभूषण स्त्री को नहीं देना, सबको लोग को लेकर के उसों के दिल में कोई खर्च नहीं करना, कपड़े लत्ते अच्छे नहीं देना, पढ़ाना नहीं, पैसा खर्च हो गया, चोरों ने लूट लिया, और राजा ने आकर के उसके साथ जो मालगुजारी बंद थी वो नहीं दिया, वो भी ले लिया, बाकी रह गया उसके घर में आग लग गई, घर वालों ने जो बेटे और स्त्री थी सब ने उसको छोड़ दिया, अंत में क्या करे, अंत में कोई साधु जा रहा था, साधने ऐसा क्यों घूम रहा है, मैं बहुत दुखी, अच्छा आ जाओ, उसको त्रिदंड संन्यास दे दिया, मंत्र दे दिया संन्यास, भगवान का मैं कहते जिस गांव से तुम आए उसी गांव में भिक्षा मांग लाओ, तो जब भिक्षा मांगने कहते ये बड़ा बदमाश है, तो क्या कहते हैं उसको, जो भीतर में दोष को ढक करके साधु बनता है, पाखंडी है, पाखंडी, उसके बर्तनों को लेकर उसमें टट्टी कर देते, थू फेंक देते, ऐसे फेंक देते, रोटी मांग करके लाता उसको भी लेकर के उस पर गंदा कर देते, पानी पीने के लिए जाता तो उसमें कुछ धूल और कीचड़ लगा देते, गाली गलौज का, आज आज प्रभु की बड़ी कृपा है, ये हमारे पाप कट रहे हैं, किसी से कुछ प्रतिवाद नहीं करता, ये हमारा मुकुंद के सेवा के लिए ऐसा, धीरे 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 धीरे, अब उसकी जो संसार में जो प्रीति थी दाम के प्रति, अर्थ के प्रति, वो अर्थ की प्रीति कहाँ चली आई, जो सबसे प्यारा चीज है ना वो कृष्ण को देना चाहिए, क्या चीज हमारा प्यार है, जिसको संसार में सबसे अधिक प्यार करते हैं वह प्यार निकाल करके कृष्ण की शरण, इसका नाम है भक्ति, यहाँ पर मोह है उसको कहते हैं अज्ञानता कहते हैं, और वहां पर उसको क्या कहते हैं, प्रेम कहते हैं, ये कौन है तुम्हारी सहेली है,
यद्यपि मेरे परंश नहीं है, आत्मी है जगत, उनको कोटि बैरी के समान, कोटि बैरी के समान,
महाराज जी मैं दर्शन से बिल्कुल किसी साथ बात नहीं कर रही थी,
तो वही
सब नहीं, पर पता क्या हुआ, सब मुझसे सब बोलते हैं आप
क्यों
ऐसे ही, बस क्या
बिगड़ जाएगी तुमको बचाने के लिए, बोलते ये बिगड़ जाए,
नहीं मगर मैं फिर भी नहीं मतलब जैसे जाती तो फिर भी मतलब मुझे जानबूझ जाके जैसे मेरी मदद ना है वो कहेंगी कि क्या बात है तू आती नहीं है तू ठीक है ना, मैंने बोला नहीं मैं ठीक हूं, मतलब मैं तेरे साथ चलूंगी तू डॉक्टर
कैसे आया
माता पिता ने जन्म दिया उनके प्रति कर्तव्य है। जब छोटा सा बच्चा होता है तो बाप को नहीं जानता, किसको जानता है, किंतु बेटा असल में किसका है, बाप का है। स्त्री का यह है, उसमें वो स्थान उसका है। जब इस चीज को जानता है तब पिता के प्रति भी वो ऋणी बनता है, और जब तक नहीं जानता तो मैया को केवल पहचानता है। और जब इस चीज को जान लेता है, जैसे विश्व ब्रह्मांड में हमारे पालन पोषण करने वाले, रक्षा करने वाले, कोटि कोटि जन्मों के पिता के पिता, माता के पिता, वो प्रभु हैं, तो माता पिता के प्रति आदर रखता हुआ, उनके प्रति श्रद्धा रखता हुआ भी प्रभु का स्मरण करता है, भजन करता है। और माता पिता को मान ले कि छोड़ करके चला गया, मैं जब आया घर छोड़ करके, तो एक बार हमको घर वाले किसी तरह से घर में ले गए, हमारे पिताजी के बड़े भैया, माताजी, चाची जी, गांव के बड़े बुजुर्ग लोग सब आए, जहाँ पर था हमारी स्त्री को भी ले आए, ले करके बड़े रोने टोने लग गए। मैंने कहा कि इसके लिए रोने की क्या ज़रूरत है, मैं चलता हूँ, चला गया। दो तीन दिन गांव में था, और उसके बाद में रात में 12 बजे ठीक वहाँ से निकल कर चला आया। फिर तो उस समय जब गांव में था तो लोगों ने बहुत बहुत दूर के लोग आते थे हमको बातचीत करने, तो उस समय में यही प्रसंग उठा। उन्होंने कहा जैसे आपने माताजी के पिताजी की क्या सेवा की, मैंने उनसे कहा माता पिताजी की मैं जो सेवा कर रहा हूँ, कोटि कोटि पुत्र मिलकर के अपनी माता पिता की वह नहीं सेवा कर सकते हैं जो मैं कर सकता हूँ। कैसे, कोई बेटा, ये तुम्हारा बेटा है, ये हैं, ये बड़ा हो जाएगा, शादी कर दो तो देखो तुम्हारी क्या सेवा करेगा, देख लेना। मैं अभी संपात नहीं दे रहा, जगत की जैसी रीति है वैसे करता, बेटी इसकी शादी कर देगी, वो लेकर के अलग हो जाएगा, कोई काम करने है तुमको, ये देखने या ये बूढ़ी मरी की क्या हुआ, ये ऐसा ही जगत का ये रीति है। माता और पिता पुत्र और संतान के लिए करेंगे, वो अपने संतान के लिए करेगा, वो उसकी संतान अपने संतान के लिए करेगी, ऊपर में नहीं देखेगी नीचे की तरफ नहीं, ऐसी रीति। तुम्हारे जितने बेटे हैं, हमारे माता के और पिता के जितने लड़के हैं, वो लोग उसकी क्या सेवा करेंगे, विवाह होने के बाद में तो सब छोड़ देंगे, ये भी देखने नहीं जाएंगे, मान ले कि सेवा किया पैर दबाएंगे, यही तो, खाने के लिए कुछ देंगे, कपड़े देंगे, और क्या करेंगे, रोग हो गया तो थोड़ा सा डॉक्टर की व्यवस्था, यही तो करेंगे। हम लोग उनकी वह सेवा करेंगे जो ये लाख जन्मों तक नहीं कर सकते, हमारे संबंध से वो लोग कृष्ण की तरफ में जा करके जीवन मरण से निकल करके एकदम कृष्ण की सेवा, वो चीज हम लोग देंगे। जिसके कुल में एक भी शुद्ध वैष्णव होता है उसके जीवन घर के सभी लोग उत्तीर्ण हो जाते, अंततः तो शुद्ध यदि रहे 21 पीढ़ी के लोग उद्धार हो जाते, फिर जन्म मरण ये दुख में नहीं आते। तुम अच्छे ये बतलाओ, जिस समय तुम 12-13 वर्ष की थी उस समय सुखी थी ना अब सुखी है, ठीक बतलाओ, हैं? इसमें इतना दिन काम किया, परिश्रम किया, घर बनाया, रुपये पैसे भी आए, अभी समय क्यों नहीं सुखी है, समस्याएं आ गई। अच्छा अभी तो जैसे तैसे अभी ठीक है, अभी जब तुम 80-85 वर्ष की हो जाएगी तब समझो ये 80-85 वर्ष की तुम्हारी उम्र हो गई, इस समय सुखी है ना, उस समय सुखी रहेगी, दांत टूट जाएंगे, केश सफेद हो जाएंगे, ये जिसमें झुर्रियां आ जाएंगी, कोई चीज़ हजम नहीं होगी, चल फिर नहीं सकेगी, लोग पकड़ करके तुमको यहाँ से वहाँ ले जाएंगे, खस्ते खस्ते दाम निकल जाए, रोग सब घेर लेंगे, अब मरी तब, वो सुख है ना अभी कुछ ठीक है, ये जरूर होगा ऐसा, यदि बच गई तो। ये लोग अपनी माता की क्या सेवा करेंगे, पिता की, ऐसे माता पिता की हम लोग करेंगे क्या, एक कृष्ण नाम सुनाएंगे, उनके चित्त वृत्ति में भगवान की भक्ति लगा करके उसके जीवन मरण कोटि कोटि जन्म उनको सुधर जाएगा, जो हम लोग भगवान की कृपा उन पर बरस पड़ेगी। जन्म में मरण में दुख होगा, अभी तुम जिसको देख रही हो ना, अभी तुम है ना, ये शरीर से हमसे बात कर रही है, तुम्हारा ये बेटा है, जिस समय मान ले कि इसमें से आत्मा निकल जाएगी ना, तो उस समय तुम्हारा बेटा रहेगा कि नहीं, ये बतलाओ, नहीं रहेगा ना। अच्छा, ये तुम्हारी उस समय क्या सेवा करेगा, क्या सेवा करेगा? उस समय जलाना ही तुम्हारी सेवा होगी, जला देगा, तुम्हारे लिए कुछ प्रायश्चित कर देगा, किंतु उस वो भी तुम्हारी सेवा नहीं। यदि ये कान में ये कृष्ण नाम पड़ जाए और कृष्ण सेवा के वृत्ति तुम्हारे अंदर में आ जाए, तो तुम इस जीवन मरण से कोटि कोटि जन्मों से जो भी घूम रही है ये सब दूर हो जाएगा, इसमें शुद्ध आत्मा निकलेगी और वैकुंठ बन जाएगा। इसलिए माता पिता की सेवा ठीक है, अपने स्थान पर है, किंतु इससे भी कोटि कोटि जन्मों के माता पिता कृष्ण हैं, इसलिए उनकी सेवा करने से इस माता पिता की सेवा अपने आप हो जाती है। इस चीज़ को समझना चाहिए। हम सेवा करेंगे, मान लिया कि घर में रह गए, वो घर में रह गए, उसके मैया बाप मरेंगे कि नहीं, उसको रोक लेगा कोई? रोग होता उसको रोग को बंद कर देगा? किंतु भगवान का भजन करने से मैं गारंटी देता हूँ जरूर हो जाएगा, जीवन मरण के चक्कर से सदा के लिए उसको उठा, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, संबंध से ही हो जाएगा। जैसे मान लिया ये वो लड़का हमारे पास है, उसको रोग होता है कुछ अस्वस्थ, मैं इसके पास हमारे पास में जहाँ से कुछ है नहीं है, लाखों रुपया उसके लिए खर्च कर सकता हूँ और वो चीज़ दे सकता हूँ जो माता पिता नहीं दे सकते, जन्म मरण से छुटकारा भी करा देंगे। इसलिए माता पिता के प्रति अपनी श्रद्धा ऋणत्व रखते हुए, हम उनके ऋणी हैं, उनके गर्भ से आए हैं, इसलिए उनका ऋणी हूँ, उनका ऋण मिटाएंगे तो भगवान का भजन करके मिटाएंगे, उनको भी भगवान की तरफ में लगा देंगे, बस उनका भी, इसका माता पिता का ऋण। भागवत में ऐसा लिखा है, हम लोग जितने भी व्यक्ति हैं वो किसी न किसी रूप से माता पिता के ऋणी हैं, समाज के ऋणी हैं, देवताओं के ऋणी हैं। क्यों? वर्षा गर्मी ये सब दे करके हमारी रक्षा करते हैं, और ऋषि लोग उनकी विद्याएं हमारे पास में पहुंचती हैं, राजा का जो जिसमें सुरक्षित हम रह करके भगवत स्मरण करते हैं या अपना अपना काम करते हैं, ससुर के भी, क्यों? उसने अपनी कन्या को हमारी सेवा के लिए दिया है, इन सब के हम। किंतु जो भगवान का भजन करता है संपूर्ण रूप से, वो किसी का ऋणी नहीं, इनके ऋण अपने आप चुक जाते हैं। कहते कैसे? मान लिया इन्होंने 10,000 रुपया किसी से लिया, इनसे लिया 10,000, तो ये 10,000 के ऋणी है ना, समझ रही है बात? समझ, तुम लोग भी समझो, इन्होंने इनको 10,000 रुपया दिया और कहा जिसे 10,000 नहीं चुकने तक हमारे यहाँ नौकरी करो, दूसरी जगह मत जाना, तुम हमारे ऋणी हैं, मैं इसका सूद वूद नहीं लूँगा, तुम हमारे यहाँ बस काम करो, आज यदि जाएगा तो हमारा 10,000 रुपया दे करके तब जाना। अब ऐसे ही एक बात हमारे गुरु जी के साथ में घटना हुई, एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उनका नाम था कोई परमार्थी महाराज, पीछे और नाम था पीछे संन्यास, तो वो एक व्यक्ति से 10,000 रुपया रखते थे जो प्रभुपाद जी के साथ में संन्यास लिया था, सनातन
सनातन,
तो ये धनी मानी थे, इनके यहाँ कारखाने था कपड़े का, तो उसमें 10,000 रुपया उन्होंने किसी काम से लिया, तो उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ काम करो, हम तुम्हारा महीना भी देंगे, किंतु हमको काम छोड़ करके मत जाना, ये 10,000 रुपया तुमको मैंने से दे रखा है, जब तुम जाएगा तब हम देंगे, और नहीं तो यदि जीवन भर रहेगा कोई बात नहीं है, तुम्हारा ऋण ऐसे ही हम छोड़। अब क्या हुआ, जैसे वो एक दिन गुरुजी और हम लोग 20-25 आदमी उनके घर में गए, सनातन प्रभु जी के यहाँ, तो वो वहाँ से गरीब थे, वो आकर के हरि कथा सुने, सनातन प्रभु जी भी जानते थे ये प्रभुपाद जी का शिष्य हमारा गुरु भाई है, तो अब गुरु जी के पास में आकर के वो रोने लगे, महाराज क्या करूँ, हमारी इच्छा है जब संसार को छोड़ करके मैं भजन करूँ, आपके पास में रहूँ। कहीं जैसे तुम आज ही चले हो हमारे पास में, तो तुम्हारे बच्चे उच्चे हैं आ तो सभी हैं, उनकी व्यवस्था हम कुछ कर दें, हम चले। वो भी हमारी पत्नी भी हमारी धर्म जैसी है, अब बच्चे हो गए हैं बड़े बड़े, अब वो सब अपना पालन पोषण करेंगे, उसकी भी इच्छा है जब भजन करें तो ठीक है चले आओ। तो नहीं प्रभु, ऐसा है कि मैं सनातन प्रभु के यहाँ जो नौकरी कर रहा हूँ 10,000 रुपया उनके हमारे पास में ऋण है, इसलिए बिना ऋण चुकाए हुए मैं नहीं जा सकता। तो गुरु जी ने कहा जी अच्छा अच्छा मैं इसकी व्यवस्था कर देता हूँ। सनातन प्रभु को बुलाया और जैसे आप हमारे पास में रहते हैं क्यों रहते हैं, तो आपका बहुत ऋणी है। किस लिए ऋणी है? आप हरि कथा हमको देते हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमारा सर्वस्व आपने दिया है, इसलिए आपका ऋणी। अच्छा इस रुपये का अंदाज लगाओ जी कितना रुपया ये यदि इसको बदल दिया गया ये ऋण कितने में ये हो जाएगा, ऋण का कितना मूल्य है जो हमारे प्रति तुम लोग। अच्छा जगत में इसका कोई मूल्य नहीं है, ये अनंत खरब रुपये के समान है, तो तुम हमारा इतना ऋणी है ना। उन्होंने कहा जैसे तो ठीक है ये तुम्हारे पास में कितना रुपया इसका ऋण है, तुम्हारा उस पर कितना है? तो हंसने लगे समझ गए, अरे अब बतलाइए ना। अब उसको बुलाया, अरे भाई कितना रुपया इनसे लिया था? तो 10,000। तो ये हमारे तो अनंत रुपयों के ऋणी हैं। अच्छा तो ऐसा बात करो ये 10,000 रुपया जो हमारा तुम्हारे जो ऋण है पूरा उसमें से 10,000 रुपया कम कर देना। सनातन गोस्वामी बोलिए मैं अभी एकदम अभी बल्कि 10,000 रुपया और दे दूंगा यदि ये जाएंगे। गुरुजन ने रुपये देने की जरूरत नहीं, वो आए 2-4 वर्षों के बाद में फिर उनको संन्यास दिया हमारे साथ, जब तक जीवन रहा तब तक रहे। उसी प्रकार से हम सभी भगवान के ऋणी हैं, अनंत ऋणी हैं, और माता पिता के भी अब ऋणी हो गए। तो माता पिता का ऋणी जो है कम है भगवान के ऋण से, इसलिए जब भगवान की सेवा में जाते हैं तो भगवान कहते हैं तुमको सब ऋणों से मुक्त कर दो, न देवता का ऋण, न किसी का, न संसार का, न समाज का, न माता पिता का, न किसी का। तभी भक्त अपने माता पिता को यदि वो वैष्णव है। आजकल के लड़के तो बंदूक लेकर के मैया कहते हैं तुम अपना सब कुछ रख देने तुम्हारा। उनके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए बल्कि उनकी कल्याण की कामना भगवान से करनी चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज जी का आदर्श हम लोगों का है, उसके पिताजी ने उसको कष्ट दिया किंतु उन्होंने कभी भी नहीं कहा जैसे इसका हे प्रभु विनाश कर दीजिए, कहा जी इसकी उनकी बुद्धि ठीक हुई।
उनके लिए कामना करनी चाहिए,
उन्हें इनको भक्ति दीजिए, कामना नहीं है ये तो भगवान की सेवा, ये भगवान की आपकी सेवा कर सके तो उसमें भगवान तो और ऋणी हो जाएंगे।
नहीं
तो ये पहले समझो, हाँ ये कपड़ा है, एक दिन कपड़ा पुराना होगा छोड़ना होगा और मिट्टी में मिलेगा, यदि जलाओ नहीं तो ये क्या होगा, कीड़े मकोड़े उसे खा करके उसे टट्टी कर देंगे, और यदि जला दो तो राख हो जाएगा, और नहीं तो कुत्ता और शिगाल का ये खाने की द्रव्य चीज हो जाएगी, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे और खा करके क्या कर देंगे, टट्टी कर देंगे, तो ये सभी टट्टी है, ये हम नहीं है, हम इसके अंदर में आत्मा है। इसका जो ज्ञान देता है इससे भगवान का ऋण सब, इसलिए भगवान के प्रति हम लोग को चलना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते हुए क्या किया, उनके माता पिता का कल्याण हुआ कि नहीं, उसी से यथार्थ कल्याण। सुखदेव गोस्वामी जी जन्म लेते हुए चले गए तो उनके माता पिता थे व्यास जी, माता जी थी, इनका क्या हुआ, परम भक्त हैं बड़े प्रसन्न, पीछे से उसको भगवत रस पिलाना चाहते थे इसलिए बुला करके भगवत रस पिला करके छोड़ दे, जाओ अब जगत के सबको रस पिलाओ। मीराबाई ने क्या किया पता है, उसके माता पिता का क्या हुआ, उसका पति का कर्तव्य क्या हुआ, तुलसीदास को देखो बड़ा भारी स्त्री में आसक्त था, बहुत आसक्त था, जहां जाता स्त्री उसके पीछे, स्त्री के पीछे पीछे डूबता, एक मिनट रह नहीं सकता, एक ताना सा मार दिया, हार मांस चाम में लगा हुआ है, तो भगवान के प्रति थोड़ी सी रुचि होती तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, बस मांस लगा छोड़ करके चले गए। जब तुलसीदास जी चले गए बहुत भजन करके, जब रामायण उमायण लिख लिया, तो एक दिन अपने लठिया और एक डोल या लुटकी और एक रस्सी और झोली लेकर के जा रहे हैं अयोध्या में। पीछे में उनका गांव पड़ता था, तो वह भूल सब गए थे 80 वर्ष की उम्र में, किंतु उनकी स्त्री तभी तक जीवित थी। जब अपने गांव में आए तो ठीक अपने घर में पहुंचे, ये भी पता नहीं ये हमारा घर है, ये अदल बदल हो गया है, और उनकी स्त्री जीवित है। तो कहा भिक्षा दे, कोई भिक्षा हमको दो, दोपहर का समय। तो उसकी स्त्री को वो आवाज सुनाई पड़ी, अरे ये तो हमारे पति जैसा ही लगती है आवाज। बाहर में आई, खूब गौर से देखा, गौर से देखा उसको, ये पिशाचे वही आदमी है। वो कह रही है हमारे तरफ में घूम ऐसे देखती है, बार बार देखती है, क्यों देखती है। थोड़ी देर के बाद में वो आई, आप समझ रहे हैं ये कहाँ आए हैं, आपका यही गांव है, मुझे आप पहचान रहे हो। उनको साथी सास मार हुआ, अरे ये तो मेरी पत्नी है, वही बूढ़ी हो गई है, मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ। तो उसने कहा जैसे अब तो भिक्षा हम दे रही हैं, आप तो भिक्षा लेते हैं, मैं अपने को आपको भिक्षा दे रही हूँ, आप मुझे अब लेकर के चलिए, मैं आपके साथ रहूँगा, आप छोड़ूंगी नहीं, आपके साथ ही रहूँगी, आप जैसे रहते हैं वैसे रहूँगी। नहीं जी, ये कैसे हो सकता है, अभी इस उम्र में तो संभव पर नहीं है, मैं नहीं रख सकता। तो आप इस झोली को बहन करके ले जा सकते हैं, इस डंडे को लेकर के चल सकते हैं, मैं तो इनको मैं भी इनको ले लूँगा, इनका भार मैं अपने कंधे पर ढो करके चलूँगा, आप ऐसे ही चलिएगा, लठिया भी लेने के, मैं आपका हाथ पकड़ करके ले चलूँगी, आपकी सब प्रकार से रसोई बनाना खिलाना भिक्षा मैं ही करके ले आऊँगा, मैं आपकी सेवा करूँगी। तब उनको ज्ञान हुआ, जय अभी तक मैं झोली रखा हूँ, अभी तक लठिया है, भगवान पर भरोसा नहीं, उसने लठिया को भी फेंक दिया, झोली को भी फेंक दिया, सब छोड़ करके दिव्य ज्ञान मुझ हुआ, बोले मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, तुम हमारी शिक्षा गुरु हो। ये ऐसे स्वभाव होने चाहिए। उनको भी परम भक्ति हुई, साथ तो नहीं ले गए किंतु मन और आत्मा उनके साथ में चली गई। इस चीज को समझो, साधुओं का संग नहीं होता इसलिए जगत के आदमी नहीं समझते हैं। हनुमान जी ने शादी ही नहीं की, माता पिता को छोड़ दिया, रामचंद्र जी के सब सेवा में लगे, ये हनुमान जी ठीक है कि नहीं, गलत किया बतलाओ, तो इन लोगों ने क्या दोष किया। हनुमान जी इसलिए शादी नहीं की, घर नहीं बनाया, किसी पेड़ के नीचे भी नहीं रहे, इसीलिए अस्किंचन निष्किंचन बने रह गया, हमारा कोई भी चीज़ नहीं है। हनुमान का रूप लिया जी, हमको पेड़ों में भी रह जाएंगे, फल भी खा लेंगे, उनसे मांगने की जरूरत नहीं, जब प्रभु हमको फल दे दीजिए। ऐसा कोई हो अकिंचन निष्किंचन भगवान का भजन करे, उसका जिससे भी संसार का संबंध होगा वो भी भगवान के पास में पहुँच जाएगा, इससे बढ़कर क्या होगा। एक ने आज ना कल तो मरना है, छोड़ेंगे ही, अभी से क्यों नहीं प्रभु का हम भजन करें। ये लोग जो माता पिता की सेवा करेंगे हम करेंगे, वो नहीं कर सकते। अभी हमारे पिताजी का जब देहांत हुआ तो उन्होंने पहले से प्रतिज्ञा कर ली थी, ये सब बतले नहीं बतलाना चाहिए अपनी, किंतु तभी बतला रहा हूँ। वो एक दिन हमको स्नान करा रहे थे छोटे बच्चे के, जब मैं छोटा सा था, स्कूल में अभी साधारण पढ़ते, कितना पानी में आई, तो पिताजी उस समय हमसे कहा, वो स्नान कर रहे थे, छोटा सा बच्चा स्नान करा रहे थे, नंगे में था, स्नान करा करके तब फिर अपने स्नान करेंगे, बोले देखो अभी तुम्हारी सेवा कर रहा, तुम जब बड़ा हो जाएगा तब फिर उड़ जाएगा। हमारे आंखों में आंसू आ गए, अजय पिताजी ऐसा कभी नहीं, किंतु ऐसा ही हुआ सुजोग जी, हमको छोड़ना पड़ा घर, मैं घर छोड़ दिया। किंतु उन्होंने कहा पीछे मिले, देखो तुम भगवान का भजन कर रहे हैं ये मैं ठीक समझता हूँ, किंतु हम लोगों का मोह है ना, इसलिए नुभ को निकट देखना चाहिए। किंतु तुम एक बात करना, जब मेरी मृत्यु हो उस समय तुम जहाँ से भी सुनना वही हमारे पास में आ जाना, एक बार हमको देख करके और तब फिर तुम चला जाना, बस यही। मैंने कहा जरूर आऊँगा। मैं मथुरा में था तो उनकी उम्र उस समय 84-85 वर्ष की हुई थी। एक टेलीग्राम मिला जो उनकी तबीयत अत्यंत खराब है, वो कब जाएंगे नहीं जाएंगे कोई ठीक नहीं। मैं साथ ही किसी ब्रह्मचारी को साथ लिया और मथुरा से वहाँ गया, कुंज बिहारी था, उसको लेकर के गया। उस समय मैं मृत्यु शैया में पड़े हुए, बोली नहीं निकल रही, आँख नहीं खुल रही। अब कुछ मिनटों के ही वो बस है, मैं मथुरा से राधा कुंड का जल, यमुना जी का जल, प्रयाग का जल, ये सब लेकर के गया। और कुछ मुसब्बी थी मथुरा मठ में, कुछ प्रसाद था ठाकुर जी का, वो लेकर के गया। वहाँ जा कर के देखा जैसे सब लोग बड़े चिंतित थे, अब देखेंगे अब मृत्यु हो जाएगी। हमारे और भी दो भाई थे और भी परिवार के सब। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा देखा जी आँख बंद करके निश्चेष्ट पड़े। मैंने उनको सिर पर हाथ रखा, मैं आ गया हूँ, अपना पहले का नाम जब ये सुना तभी आँख खोल दिया। जब आँखें हमारे तरफ में देख लें आंसू उनके भर आए। मैंने वहाँ से जो चरणामृत ठाकुर जी का और तीर्थों का जल ले गया था तुलसी लगा करके, और तुलसी की माला शुद्ध ठाकुर जी को अर्पित करके उनके गले में और उनके कान में हरे कृष्ण 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 हरे पहले से उनको पहले दे दिया था ये सुनाया, और फिर उनको गोपाल मंत्र उनको सुनाया और कहा जिसे कृष्ण का ध्यान करे बंसी बजाए हुए राधिका जी को बाएं रखे, वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं इसका हृदय में धारण की, ठीक है तो ठीक है, जो कहा याद है तो याद है। इसके बाद में गाँव के हजारों आदमी आ गए, इधर कीर्तन होने लगा, रात भर कीर्तन होता रहा। तब तक है हमने गीता का आदि से अंत तक प्रवचन करके सुनाया, ऐसे चुपचाप लेटे हुए सुन रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, हमसे भी बातचीत कर रहे हैं। जब सवेरा हो गया तो मैंने कहा जी अब मेरा कृत्य समाप्त हुआ, आपको जम स्पर्श नहीं करेगा, इसकी गारंटी मेरे ऊपर में है, आप निश्चिंत रहें, आप जम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये कह करके मैंने कहा जैसे अब कहिए तो मैं चलूं, उन्होंने कहा जी अच्छा चल जाओ। मैंने हमारा कृत्य समाप्त हुआ, देह के साथ में आपका संपर्क जो था संबंध दूर हो गया, अब आपकी संपत्ति जो भोग कर रहे हैं वो लोग आपका क्रियाकर्म दास संस्कार और जो कुछ करना होगा ये लोग करेंगे, उनकी संपत्ति आपकी संपत्ति के ही अधिकारी होंगे, मैं आपके परमार्थ संपत्ति का उससे हमारा संपर्क है, इसलिए अब आप आदेश दीजिए मैं वृंदावन में जाऊँ। कहा जी ठीक है। मैं गया थोड़े से गाँव में पार होकर के जब रास्ते पर आए तो इतने में जोर से लोग रोने लगे, बस केवल हमारे लिए उनका प्राण टिका।
आपने बताया था 2-3 दिन से किसी बात भी नहीं है, देखा भी नहीं, आप जाते ही बात किया देखा
बता रहे। तो ये माता पिता की सेवा थी, जब उनके पास में नहीं आए इस चीज को समझेगा कौन,
फिर आप वापस तो नहीं गए?
नहीं, उन्होंने लिखा, मैंने पहले कह दिया था ये सब हमारा काम नहीं, हम लोग सन्यासी हैं, बस आत्मा के साथ में संपर्क।
फिर बुलाने के लिए आए
भोली से मधुर भाव से राधा जी के चित्र को आकर्षण करते हैं, इसलिए वो राधा जी के साथ में विलास करते हैं रमण करते हैं, तो वही कृष्ण ही राम है। ये सब इसमें हजारों लीलाएं हैं, जो जितना डूबेगा उतना आएगा, इसलिए महाप्रभु जी ने यह नहीं कहा जैसे राधे राधे कहो कृष्ण कृष्ण कहो, उन्होंने कहा क्या